हरे कृष्ण। आप समस्त उपस्थित भक्तों का सोमवार के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ दिल्ली की तरफ से हमारा अत्यंत हार्दिक आभार आप सबके लिए, और आप सबको हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज के प्रोग्राम में। हरे कृष्णा। आज हम लोग पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे भागवत गीता के अध्याय 5। अध्याय का नाम है कर्मयोग, कृष्ण भावना भक्ति, कृष्ण भावना भावित कर्म। और श्लोक संख्या है 29। तो आप सब मेरे पीछे दोहराइएगा। भोक्तारं यज्ञतपस्सां सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं ऋच्छति। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं ऋच्छति। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं ऋच्छति। मैं से कोई पढ़िए। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं ऋच्छति। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं ऋच्छति। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां अनुवाद और तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तात्पर्य, माया के वशीभूत सारे बद्ध जीव संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु भगवद गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वे नहीं जानते। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता हैं। मनुष्यों को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे, क्योंकि वे ही समस्त लोकों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं है। वे बड़े से बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी महान हैं। वेदों में सुतास्वर उपनिषद छठा अध्याय सातवां श्लोक भगवान को तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम कहा गया है। माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। भगवान प्रकृति माया के स्वामी हैं और बद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। जब तक कोई इन तथ्यों को समझ नहीं लेता, तब तक संसार में व्यष्टि या समष्टि रूप में शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। कृष्ण भावनामृत का यही अर्थ है। भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं तथा देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित हैं। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। तात्पर्य थोड़ा बड़ा है तो हम लोग यहीं पे विराम करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रोग्राम में, और बड़ा ही उत्तम श्लोक है आज भगवद गीता का, क्योंकि इस श्लोक में जिस चीज की हम तलाश कर रहे हैं जन्म जन्मांतर से, वो रहस्य का खुलासा किया है भगवान ने। वो जिस चीज की हम तलाश कर रहे हैं वो शांति और सुख। शांति और सुख कैसे प्राप्त किया जाए इसका इस श्लोक में वर्णन किया है भगवान। भगवान आत्मा राम है, हमेशा संतुष्ट रहते हैं। तो फिर भगवान को क्या पड़ी है कि हमें शांति और सुख का उपदेश देने आए इस संसार में, वो क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भगवान जो है वो हमारे पिता हैं, और एक पिता जो होता है वो हमेशा, पिता कितना भी खुश हो अगर उसकी संतान दुखी है तो पिता दुखी रहता है। उसी तरह से भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि सर्वजनेषु कौन्तेय अहम् बीजप्रदः पिता। हे अर्जुन, सारी योनियों में बीज प्रदान करने वाला पिता मैं ही हूँ। ममैवान से जीव लोके जीव भूत सनातन, जीव जो है वो भगवान का अंश है, जैसे पुत्र पिता का अंश होता है उसी तरह से जीव जो है भगवान का अंश। और इसीलिए भगवान का एक प्रेम का संबंध है जीवात्मा से। इसीलिए जब जीवात्मा जहां भी रहे भगवान उसका साथ नहीं छोड़ते। आप किसी भी जगह पे पूछ ले जाइए, भगवान आपके बगल में बैठे रहते हैं, हृदय में, छोड़ते नहीं है अकेले। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। बगल में खड़े रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं कब दिखेगा मेरी तरफ। अभी हम भूले हुए हैं भगवान को। जीवात्मा भगवान को भूल सकता है लेकिन भगवान जीवात्मा को नहीं भूल सकते, ये भगवान का मानता है, इसीलिए बता रहे हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम, सारे जीवों का मैं सुहृद हूँ। सुहृद का अर्थ होता है वेल विशर, वेल विशिंग फ्रेंड। तो भगवान जो हैं बता रहे हैं कि सारे जीवों का, केवल देवताओं का नहीं या केवल मनुष्यों का नहीं बल्कि समस्त जीवों का, भगवान के लिए सब बराबर हैं, सबसे प्रेम करते हैं। यहाँ तक कि जब मल के अंदर जो कीड़ा होता है, उस कीड़े के हृदय में भी भगवान बैठे रहते हैं, मल के अंदर। कौन करेगा इतना प्रेम? बताइए। हम सबको जीवन साथी की तलाश है ना? jeevansathi.com ट्रू कंपेनियन ऑफ लाइफ, जन्म जन्मांतर से तलाश कर रहे हैं। जिस जीवन साथी की हम तलाश कर रहे हैं वास्तव में, वो भगवान ही है। लेकिन चूंकि इसका ज्ञान नहीं है हमें, इसीलिए हम इस संसार में नाना प्रकार के रिसर्च और कहते हैं ना कि फाइंडिंग करते हैं, खोजबीन करते हैं, कौन है मेरा मैच। आपका मैच कभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके मैच केवल भगवान है और कोई मैच हो ही नहीं सकता। बाकी जितने मैच हैं वो डिफेक्टिव मैच। तो क्यों? इसीलिए संतुष्टि शांति नहीं मिलती है। एक मैच नहीं, करोड़ों करोड़ों जन्मों से कई मैच हमने सेट करने का प्रयास किया, फिट करने का प्रयास किया, लाइन बैठती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रू कंपेनियन ऑफ लाइफ आत्मा का परम भगवान है, परमात्मा। और किसी के साथ हमारा वो संबंध हो ही नहीं सकता। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो और कहीं पे भी अगर हम ढूंढने का प्रयास करेंगे शांति और सुख, तो संतुष्टि नहीं मिलेगी। इसीलिए ये संघर्ष जारी रहता है, रिसर्च जारी रहता है। सोचते हैं इस व्यक्ति से शादी हो जाए तो संतुष्ट हो जाएंगे, इस व्यक्ति से संबंध जुड़ जाए संतुष्ट, लेकिन नहीं। वो संतुष्टि मृग मरीचिका बन के रह जाती है, क्योंकि वो संबंध तो केवल भगवान से ही हो सकता है हमारा। लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता ये सब सुनने में। क्यों? आज अगर हमें बताया जाए कि आपका ट्रू मैच जो भगवान ही है, तो बुरा लगता है थोड़ा हृदय में। अरे ये क्या है? क्यों? क्योंकि जीवात्मा के हृदय में आज अभी डाइवोर्स हो चुका है भगवान से, झगड़ा हो गया है। जीवात्मा ने भगवान से संबंध विच्छेद कर लिया है और सोच रहा है कि उनका कोई दूसरा मैच मिले। तो भगवान के बारे में अगर बताया जाता है तो उसको अच्छा नहीं लगता है, ईर्ष्या है भगवान से। लेकिन भगवान को कोई ईर्ष्या नहीं है हमसे। भगवान तो अगर हम छोड़ भी देते हैं भगवान को, फिर भी भगवान हमारे पीछे पीछे लगे रहते हैं। ऐसा नहीं केवल भगवान गोपियों के पीछे रहते हैं, भगवान सारी जीवात्माओं के पीछे लगे रहते हैं। अंतर यही है कि गोपियां उन भगवान के प्रेम को समझ पाती हैं और हम नहीं समझ पा रहे हैं, बस इतना ही अंतर है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः, यो भजन्ति माम भक्त्या मई तेते सुचाप्य हम। मैं सारे जीवों के लिए बराबर हूँ, ये नहीं कि गोपियों के लिए ज़्यादा प्रेम भगवान के हृदय में और हमारे लिए नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान के हृदय में हम सबके लिए समान प्रेम है। लेकिन भगवान बताएं, यो भजन्ति माम भक्त्या, जो मेरा भक्ति करता है उसके साथ ज़्यादा आदान प्रदान होता है। भगवान के संकेत को हम नहीं समझ पाते हैं, हम उनके प्रेम को नहीं समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा फ्रीक्वेंसी अभी दूसरी जगह मिला हुआ है। तो इसलिए भगवान हम सबसे प्रेम करना चाहते हैं, हमें सुखी देखना चाहते हैं। भगवान इस संसार में अगर कोई व्यक्ति सुखी है तो वो नहीं चाहता है कि दूसरा भी सुखी रहे, मैं सुखी रहूं बाकी सब दुखी। लेकिन भगवान बिल्कुल उल्टे, भगवान स्वयं सुखी हैं और साथ ही पर उनको एक ही दुख है कि बाकी सब क्यों सुखी नहीं है। भगवान परम शांति प्राप्त कर रहे हैं गोलोक धाम में, लेकिन फिर भी उनको एक अशांति है कि ये जीवात्माएं जो मृत्यु लोक में है इनको शांति कैसे दी जाए। और इसीलिए भगवान अवतार लेते हैं पृथ्वी में, हम सबको शांति देने के लिए, सुख देने के लिए, हमें रास्ता दिखाने के लिए, शांति का मार्ग दिखाने के लिए, हमें रास्ता दिखाने के लिए आते हैं भगवान इस संसार में। क्या जरूरत पड़ी है भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। यहां तक कि देवताओं को भी पूजे हैं भगवान, बड़े बड़े देवता भी अपने मुकुट को भगवान के चरणों के धूल से नहलाते हैं, इतने महान हैं वो, उनको क्या पड़ी है हमें आके बताने की। एक ही कारण है कि वो हमसे प्रेम करते हैं, लेकिन इस तथ्य को हम समझते ही नहीं, इस तथ्य को हम नहीं समझते, अज्ञानता में है, और इसलिए अज्ञानता ही हमारे दुख का कारण है। नहीं तो भगवान का संतान होके कोई दुखी कैसे रह सकता है, हो ही नहीं सकता है। लक्ष्मी सहस्त्र सप्तसंभ्रम से बेमानम, जिसके पिता लक्ष्मी पति हो वो लक्ष्मी का भिखारी कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता। लेकिन चूंकि हम उनको भूल चुके हैं और अलग रहने का प्रयास कर रहे हैं इसीलिए हम दुखी हैं। भगवान बता रहे हैं कि मैं सारे लोकों का सर्वलोक महेश्वरम स्वामी हूं, मैं मालिक सबका मालिक मैं ही हूं। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत याम जगत, इस संसार में आप जो कुछ भी देख रहे हैं एवरीथिंग सब कुछ बिलोंग्स टू कृष्णा, नथिंग बिलोंग्स टू अस, सब कुछ भगवान का है। हम इस संसार में आते हैं नंगे आते हैं और जाते भी हैं नंगे, अब बीच में आके बोलते हैं ये मेरा प्रॉपर्टी है, लेके आए थे नहीं, पहले से ही था भगवान का, और लेके भी नहीं जाएंगे क्योंकि ईशावास्यम इदम सर्वम, हर चीज हर वस्तु भगवान की है। लेकिन भगवान कितने दयालु हैं देखिए, उनकी है फिर भी हमारे लिए व्यवस्था कर रखा है, ठीक है तुम लोग एंजॉय करो, भोग करो, खाओ पियो, हमारे लिए इतनी सुंदर व्यवस्था की आप देखिए। इस संसार में जिस चीज का सबसे ज्यादा डिमांड होता है वो चीज सबसे ज्यादा महंगी होती है कि नहीं, सबसे ज्यादा डिमांड है सबसे ज्यादा महंगी होगी, प्राइस बढ़ जाता है क्योंकि शॉर्टेज होता है। हमारे जीवन में जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, जिसके बिना आप 2 मिनट 3 मिनट भी जीवित नहीं रह सकते, सांस है ना। आप सब बुद्धिमान हैं, सोचिए जरा, और आपके जीवन में सबसे फ्री में क्या अवेलेबल है, सांस, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसका सबसे ज्यादा डिमांड है वो सबसे फ्री में है, फ्री सप्लाई, 24 घंटे नाक के नीचे सप्लाई, कभी सोचा आपने? जैसे पावर सप्लाई, वाटर सप्लाई होता है, अगर सांस सप्लाई का होता तो कितना दिक्कत हो जाता हमारे लिए हैं? आ कहीं पानी, अगर आप मान लीजिए बोतल में पानी भर के ले जाना भूल गए तो चलिए 3-4 घंटे काम चल जाएगा। मान लीजिए हवा भी भर के ले जाना होता है, गलती से छूट जाता हवा तो क्या होता है? तो इसलिए भगवान जानते हैं कि हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हवा है, इसलिए हवा की व्यवस्था करके रखा है। लेकिन हम सब, हमें दिखाई नहीं देता। भगवान हमारे लिए इतनी व्यवस्था की लेकिन हम देखते नहीं हैं। हम सोचते हैं ये तो अपने आप मिल रहा है, ये तो अपने आप मिल रहा है। आपके खाने की कितनी अच्छी व्यवस्था की गई है, भूख से पहले खाना का निर्माण हुआ है कि नहीं? जैसे एक बच्चा जन्म लेता है उससे पहले माँ के स्तन में दूध का व्यवस्था किया जाता है ना? देखिए भगवान की व्यवस्था, जानते हैं भगवान बच्चा और कुछ नहीं खा सकता, अन्न नहीं खाएगा, तो भगवान सबकी व्यवस्था करते हैं। हमारे खाने की कितनी व्यवस्था होता आप जमीन में एक अनाज का दाना डालिए और हजारों दाना निकल जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, बस एक दाना फेंक दीजिए जमीन में और अपने आप पौधा निकलेगा। कौन बना रहा है पौधे को, कैसे बन रहा है पौधा, इतना डिटेल में हमें जानने की आवश्यकता ही नहीं है, अपने आप पौधा निकलेगा और उसमें से एक दाने से हजारों दाना निकलेगा, है कि नहीं? गांव में जाएंगे तो खेत होता है, खेत में इतने खेत से पिछले हजारों वर्षों से अनाज निकल रहा है उस खेत से है कि नहीं? खेत उतना का उतना ही है, हजारों टन अनाज निकल चुका है वहां से और मिट्टी उतनी की उतनी ही है, तो ये अनाज कहां से आ रहा है? क्या ये मिरेकल नहीं है अपने आप? मिट्टी उतनी की उतनी ही रहती है। अगर मान लीजिए कि आपके पास 200 केजी मिट्टी है, उसमें से 100 केजी निकाल दीजिए तो 100 केजी ही बचना चाहिए ना? अब देखिए उतना का उतना ही जमीन है लेकिन अनाज निकले जा रहा है। कभी खत्म नहीं होता है और निकलता रहेगा, अनंत समय तक उतनी ही मिट्टी रहेगी और अनाज भी निकलता रहेगा। भगवान की व्यवस्था है, ध्यान से सोचिए। हम लोग तो खेत देखते ही नहीं, इसलिए हमें लगता है कि अनाज ग्रोसरी शॉप पे आता है, से आता है, वहाँ पे खत्म हो जाता है, तो वहाँ पे तो खत्म हो जाता है। लेकिन भगवान की व्यवस्था ऐसी नहीं है, भगवान ने बहुत ही उत्तम व्यवस्था कर रखा है। तो इन सब को हम समझेंगे अगर कि भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं तो हम सुखी होंगे। वास्तव में ये सब कुछ भगवान का है इस संसार में, लेकिन सब कुछ भगवान का होते हुए भी भगवान ने हमारे लिए व्यवस्था कर रखी है। ये नहीं बोलते कि तुम मत खाओ, तुम भूखे रहो, सब कुछ मुझे खिला दो, ऐसे नहीं बोलते भगवान। भगवान बोलते हैं कि नहीं, ठीक है तुम्हें भूख लगती है तो खाओ, सब कुछ मेरा है, लेकिन तुम सब मेरे पुत्र हो इसलिए मेरा तुम्हारा कोई अंतर नहीं है, है कि नहीं? कोई अंतर नहीं है। लेकिन भगवान बस इतना ही चाहते हैं कि तुम इस बात को स्वीकार कर लो कि संपत्ति तो मेरी ही है, मैं पिता हूं तुम्हारा, तुम मेरे पुत्र हो, इस बात को मानो तुम। इतना आशा करते हैं भगवान। और तुम सब कुछ मेरी प्रसन्नता के लिए ऑफर करो, चढ़ाओ, जो भी करो मेरे लिए करो, और मैं जो भी करूंगा तुम्हारे लिए करूंगा, ये भगवान चाहते हैं। इस तरह से भगवान बोलते हैं कि मेरा सब कुछ तुम्हारा है, तो भगवान भी चाहते हैं हम भी बोलें कि भगवान मेरा भी सब कुछ आपका है। समझ में आ रहा है? बस इतनी सी आशा है भगवान की कि हम अपना एक सर्वस्व एक दूसरे के लिए समर्पित करें, ये प्रेम है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपना तो कुछ है ही नहीं, अब भगवान का भी जो है वो बोलते हैं ये मेरा है, और बोलते हैं कहाँ भगवान, कौन भगवान, भगवान है ही नहीं, गॉड डजेंट एग्जिस्ट, भगवान का बनाया हुआ सांस ले लिया, भगवान का बनाया हुआ पानी पी लिया, खाना खा लिया, हैं, और मोटे मोटे होके घूम रहे हैं, बोल रहे हैं भगवान है ही नहीं, हैं, बोलते हैं कि मैं ही बनाया, मैं कर रहा हूं, मैंने हार्ड वर्क किया है, मेरी बुद्धि से संसार चल रहा है, आपकी बुद्धि से चल रहा है, लेकिन वो बुद्धि क्या आपने बनाया, क्या आप माता के गर्भ में थे तो बुद्धि बना रहे थे अपना, उस बुद्धि को किसने बनाया, हमने तो नहीं बनाया। अगर हमें भी बुद्धि बनाना रहता तो हम सब आइंस्टीन होते, सब अपनी अपनी बुद्धि अच्छा बनाए रहते, सब भगवान बनाते हैं। अच्छा कार्य करने शक्ति भगवान से आती है, व्यवस्था भगवान करते हैं, लेकिन चूंकि भगवान छुपे रहते हैं, बैकग्राउंड में रहते हैं, इसलिए हमें दिखाई नहीं देते। लेकिन जिसको थोड़ा सा भी सेंस है वो समझ सकता है कि भगवान सब कुछ कर रहे हैं, सबके स्वामी भगवान हैं। तो वो क्या करेगा, वो भगवान से प्रेम का संबंध स्थापित करेगा फिर से जो खो चुका है। आज तो जो भी भगवान, अगर सब कुछ भगवान से कहे तो सब कुछ का भोग करने वाले भी भगवान में ही होने चाहिए। अगर मान लीजिए कि आपने दिल्ली में कोई घर बनाया, आप उस घर के मालिक हैं, तो उस घर में एंजॉय कौन करेगा, आप ही करेंगे ना, जो मालिक है वही, उसी को अधिकार है एंजॉय करने का ना। तो अगर भगवान समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी हैं तो समस्त ब्रह्मांडों में जो कुछ भी है उसका भोग करने का अधिकार भी केवल भगवान को ही है, इस हिसाब से भी देखा जाए तो। हम सब भगवान भोगता हैं, भगवान भोगता है, और हम सब उपभोक्ता हैं, हम सब मेन भोक्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान स्वामी है इसलिए भोक्ता है। अगर हम सब लोग भोक्ता बनने का प्रयास करेंगे तो अशांति होगी, लड़ाई झगड़ा करप्शन, ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि सब भगवान की नकल कर रहे हैं, भोक्ता बनने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे हम सब भगवान भोक्ता हैं, इस बात को पहले स्वीकार करना, अगर हम शांति चाहते हैं तो, हम भोक्ता नहीं हैं, भगवान भोक्ता हैं, भगवान के लिए हर कुछ अर्पित करना है, भगवान के लिए कार्य करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही सब कुछ होना चाहिए। और दूसरा कि भगवान सब कुछ सबके मालिक हैं, तो अगर हम इसका शांति से कैसे संबंध है, भगवान अगर मालिक हैं तो शांति से का क्या रिलेशन है? तो शांति से यह रिलेशन है कि जब अगर हम इस बात को स्वीकार करेंगे कि भगवान एकमात्र इंजॉयर हैं, भुक्ता हैं, तो फिर लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, लड़ाई कब होता है? जब रोटी एक है और 10 लोग बोलते हैं नहीं मेरा है, और 10 आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो इसके लिए क्या होता है? मारपीट होता है। अगर सब बोले ये बात कि नहीं ये रोटी हम में से किसी का नहीं है, ये भगवान कृष्ण का है, भगवान कृष्ण को अर्पित किया जाए और प्रसाद के रूप में जो भी मिले है उसको प्रसाद के रूप में बांट के खाया जाए, तो अभी क्या स्थिति है? हर व्यक्ति भगवान बनना चाहता है, बोलना चाहता है सब ये मेरा है। तो इससे क्या होता है कि मेरा मेरा और आपका मेरा दोनों में क्या हो रहा है? टकराव हो रहा है। मेरा मेरा और आपका मेरा में टकराहट हो रही है और इससे क्या हो रहा है? अशांति। ये मेरा देश है, अभी भारत में बड़ा जोश चढ़ा है, वंदे मातरम, जोश चढ़ गया एकदम, देशभक्ति का जोश चढ़ा हुआ है जुनून, और मेरा भारत महान, मेरा, और उधर पाकिस्तान बोलता है मेरा पाकिस्तान महान, और पाकिस्तान का मेरा और भारत का मेरा है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे जब टकराता है तो कारगिल युद्ध होता है, हजारों लोग मारे जाते हैं, और इसको बोलते हैं अशांति। लेकिन अगर बोला जाए कि ये मेरा भारत नहीं है, ये भगवान का भारत है और भगवान का ही पाकिस्तान भी है, पाकिस्तानी भी भगवान के ही अंश हैं और भारत वाले भी भगवान के ही पुत्र हैं, इस तरह से भारत और पाकिस्तान दोनों भाई भाई, फिर लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, यही बता रहे हैं भगवान इस श्लोक में। अगर तुम ये मानो कि सब मेरा है तो इस हिसाब से यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सब भगवान के हैं, ये भगवान का परिवार है, तो एक परिवार में आपस में झगड़ा क्यों किया जाए? सिंपल सी बात बता रहे हैं भगवान, एक दूसरे को क्यों मारे? एक परिवार में हम एक दूसरे को मारते हैं नहीं मारते। तो उसी तरह से भगवान इसको समझाना चाहते हैं। अगर आप एक जैसे एक तालाब है, तालाब में अगर आप एक कंकड़ डालते हैं तो क्या होता है? रिपल्स बनती हैं, है ना, ऐसे, और दूसरा व्यक्ति एक डालेगा तो उसका भी रिपल्स बनेगा और दोनों रिपल आके टकरा जाती हैं। तो जितने लोग हैं उतने सबका अपना अपना एक रिपल बनेगा और सबका टकराता है आपस में, तो इससे क्या होता है? अशांति होती है। और अगर मैं भी अपना कंकड़ इस पॉइंट पे डालूं और वो भी इस पॉइंट पे डाले तब टकराहट नहीं होगा, एक ही पॉइंट पे सब लोग कंकड़ फेंके तो सारी रिपल्स पैरेलल होगी, कोई टकराएगा नहीं। उसी तरह से अगर सेंट्रल पॉइंट कृष्णा रहें और सब लोग अपना सब कुछ कृष्णा को अर्पित करें तो कोई टकराहट नहीं होगा, क्लैश नहीं होगा। लेकिन सब अगर अलग अलग अपना 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 निकुंज बनाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा, उससे क्या होता है? टकराहट होती है। मेरा मेरा और आपका मेरा और उनका मेरा टकराता है, तो इससे क्या होता है? अशांति होती है। तो इस सूत्र को बता रहे हैं भगवान इसमें। और दूसरा क्या है? मान लीजिए इस हॉल में कितने लोग बैठे हैं? लगभग 200 है ना, 200 व्यक्ति बैठे हैं और अभी प्रसादम होने वाला है, गुलाब जामुन जो है वो गुलाब जामुन भी 200 ही है, गिन के बनाया है सत्येंद्र प्रभु ने, है ना। अब क्या है, इसमें से एक व्यक्ति बोल रहा है मैं ही भोक्ता हूं, बाकी सब भोक्ता नहीं है, है? तो वो क्या करेगा, 200 में से 50 और इस तरह से दो तीन लोग अगर उसके जैसे हो गए तो फिर बाकी लोगों को भूखे रहना पड़ेगा। लेकिन ये कहते हैं सेल्फिश मेंटेलिटी। लेकिन दूसरा एक तरीका है, ये भौतिक जगत है, इसमें जो पावरफुल है वो चाहता है मैं सबसे ज्यादा एंजॉय करूं, सब कुछ मेरा होना चाहिए, ये भौतिक जगत है, और इसीलिए वो अशांत रहता है, बोलता है इसका तो आ गया, इसका तो संपत्ति मेरे अंडर में आ गया, इसका भी आ गया, इसका उसका अभी तक नहीं आया है, तो वो दिमाग चलाता है उसका कैसे लेके आए, इसको बोलते हैं MBA, मास्टर ऑफ बिजनेस इन्वेस्टर। अच्छा, उसके पॉकेट में अभी भी कुछ पैसा बचा हुआ है, अच्छा कौन सा मार्केटिंग स्ट्रेटजी अप्लाई किया जाए कि उसका पैसा जो है वो इधर आ जाए, है ना। तो एक एक तरह से सबके पॉकेट का पैसा दिख रहा है, उसका लेके आना है मेरे पॉकेट में, है ना, ये चल रहा है ये गेम अभी। तो सबकी संपत्ति, और जब जब तक सब मेरे कब्जे में नहीं आ जाते सब लोग, तब तक शांति नहीं है, और वो दिन कभी आएगा नहीं, वो दिन कभी नहीं आने वाला है कि सब कुछ आपका अपना होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये संसार ऐसा डिजाइन किया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति भगवान के अलावा और कोई भी अगर भोक्ता बनने का प्रयास करेगा तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, और बहुत ज्यादा अगर प्रयास करेगा तो सुसाइड भी कर सकता है। अभी हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं हम कंट्रोलर हैं, हम कंट्रोल करेंगे, भगवान जैसे कंट्रोल कर रहे हैं तो मैं भी क्यों नहीं कर सकता कंट्रोल, मैं भी भगवान की तरह कंट्रोल करूंगा। आप कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन आपके अंदर उस शक्ति है ही नहीं, अगर आप नकल करने का प्रयास करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। जैसे कि मान लीजिए आपके पास क्षमता है 50 kg या 30 kg लोड उठाने का, ठीक है, और आपने जो है वो ओलंपिक का गेम देख के आए, उसमें देखे कि किसी ने 250 kg उठाया है, अब आप सोचे मैं क्यों नहीं उठा सकता, और आपके दोस्त हैं 4-5 वो बोलते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं उठा सकते, जरूर उठा सकते, आप महान हैं, यू आर ग्रेट, यू आर दिस, यू आर दैट, आप जरूर उठा लोगे, चिंता मत करो उठा लोगे उठा लोगे। आप भी शुरू में तो लगता है अरे नहीं नहीं मैं नहीं उठा सकता, मैं तो 30 kg उठा सकता, लेकिन बगल वाले लोग या जो आपके नीचे के वाले नहीं नहीं आप उठा लेंगे आप उठा लेंगे, तो हम इधर अच्छा वैसे तो लग नहीं रहा है लेकिन इतने लोग बोल रहे हैं तो हो सकता है उठा लूंगा, है ना। जैसे कोई व्यक्ति अगर जब साधारण होता है तो कम पैसे में ही गुजारा कर लेता है, कम चीज रहते तो, लेकिन जब थोड़ा सा बड़े पोस्ट पे जाता है या थोड़ा बड़ा होता है तो उसको बोलते हैं लोग आप तो बहुत महान हैं, आप इतनी छोटी गाड़ी में कैसे चल सकते हैं, उसको पहले उसको महान नहीं लग रहा था, उसको उसको लगता है मैं सिंपल हूँ, लेकिन अब क्या सोचता है इतने लोग महान बोल रहे हैं, वैसे तो हूँ नहीं लेकिन अगर इतने लोग बोल रहे हैं कि महान हो तो हो सकता है मैं महान हूँ। अब वो क्या करता है, धीरे धीरे अपने आप को महान मानने लगता है, और महान मानकर क्या करता है, वो बड़ा लोड उठा लेता है, और बड़ा लोड उठा लिया सिर पे, और उठाने के बाद उसको पता चल रहा है भैया महान नहीं है, ये तो बहुत भारी हो गया, अब क्या करे, तो बोलता है बहुत भारी लग रहा है। नहीं नहीं भारी नहीं है, आप बहुत महान है, आप उठा के रख उठा सकते हैं। तो बाकी लोग जिन्होंने महान बनाया था वो उसको बोलते हैं नहीं नहीं उठाए रहिए उठाए रहिए। और अब क्या हो गया, प्रेस्टीज का सवाल है, प्रतिष्ठा में प्राण गंवाना। अब वो दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, स्ट्रेस डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन चल रहा है, एंग्जाइटी, लेकिन छोड़ नहीं सकते। क्यों? प्रेस्टीज इशू, आई एम गॉड, मैं गॉड हूँ, कंट्रोलर हूँ, छोटा बन जाऊंगा तो फिर क्या लोग क्या सोचेंगे। यू आर नॉट गॉड, आप भगवान नहीं हैं। और जो बुद्धिमान व्यक्ति जो भक्त हो क्या बोलेगा, लोग बोलेंगे तुम भगवान हो, अरे नहीं भैया मैं तो दास हूँ भगवान का, मैं तो दास हूँ, मेरे अंदर क्षमता नहीं है। नहीं नहीं आप भगवान, नहीं नहीं भगवान नहीं हूँ, आप भगवान हो, आप उठाइए, मैं तो कृष्ण का दास हूँ, मैं तो जितना उठाए उठेगा उतना उठाऊंगा, बाकी भगवान जाने, उन्हीं को उठाना होगा तो उठवाएंगे, जिससे भी उठाना, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई टेंशन नहीं, जितना कैपेसिटी उतना उठाया, कोई मान अपमान के पीछे पागल नहीं रहता है भक्त, प्रेस्टीज के पीछे पागल नहीं रहता है, क्योंकि वो जानता है कि प्रेस्टीज केवल भगवान के लिए है, और हमारा प्रेस्टीज इसी में है कि हम इस बात को स्वीकार करें कि हम भगवान के दास हैं, उससे बड़ा कोई पोस्ट नहीं है इस संसार में, भगवान के दास, कृष्ण दास बनने से बड़ा पोस्ट कोई है ही नहीं। लोग बोलते हैं अरे कोई 3 साल इस्कॉन में अगर मैं रहूंगा तो आप क्या करोगे मेरे साथ, क्या मिलेगा मुझे, 1 साल के बाद क्या होगा, 2 साल के बाद क्या, और 3 साल के बाद क्या होगा, मैं 3 साल के बाद आपको कृष्ण दास बनाया जाएगा। तो 3 साल के बाद दास, मुझे दास बनाओगे आप लोग, दास बनने के लिए मुझे इतना मेहनत, इतना क्लास अटेंड करना पड़ेगा, और वो भी उस व्यक्ति का जिसको किसी ने देखा भी नहीं, जबकि हमें ये पता नहीं है कि हम सब दास हैं, वास्तव में दास हैं ऑलरेडी, को हर व्यक्ति किसी न किसी का दास है, पति सब व्यक्ति सेव, हर व्यक्ति सेवक है, पति पत्नी का सेवक, पत्नी पति का सेवक, स्टूडेंट इज सर्विंग द टीचर एंड टीचर इज सर्विंग द स्टूडेंट। यहाँ तक कि अगर आप सिविल कलेक्टर भी बन जाते हैं, डीएम जिसको बोलते हैं, उसको भी बोलते हैं आईएएस, आईएएस का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, तो वहां पे जाके आपको सर्विस ही करना है, यानी कि वहां पे जाके मालिक बनना है, लोक सेवा आयोग सिविल सर्विसेज, सेवा ही करना है, सेवक ही बनने जा रहे हैं, सोशल सर्विस कर रहा हूं तो सर्विस ही कर रहे हैं ना, कोई बड़ा काम तो नहीं कर रहे हैं, देश सेवा कर रहे हैं, सेवा सेवा ही सब कर रहे हैं, मानव सेवा, समाज सेवा, देश सेवा, हर व्यक्ति सेवा कर रहा है इस संसार में, हर व्यक्ति, माता पुत्र का सेवक कर रही है, पुत्र माता पिता की सेवा कर रहा है, हर व्यक्ति सेवक है इस संसार में। प्रधानमंत्री भी जब चुनाव से पहले बोलता है कि आप सब हमें सेवा का मौका दीजिए, ये बात अलग है, बाद में सेवा नहीं करता है, लेकिन शुरू में वो भी सेवक ही बनने का बोलता है, अगर वो बोले मुझे मालिक बनने का मौका दीजिए तो कभी उसको वोट नहीं देगा कोई। तो हर व्यक्ति सेवक है, तो सेवक तो हम हैं ही, दास तो हम हैं ही, अब कैटेगरी कौन बड़ा है और कौन छोटा डिसाइड होगा कि कौन किसका दास है कि नहीं। तो जो व्यक्ति डीएम का दास है तो चलो भाई बड़ा पोस्ट है, और जो चीफ मिनिस्टर का दास है वो और थोड़ा बड़ा हो गया, और जो जो प्राइम मिनिस्टर का दास है वो और बड़ा हो गया, और जो प्रेसिडेंट का दास है वो थोड़ा और बड़ा हो गया। लेकिन सारे प्रेसिडेंटों के जो प्रेसिडेंट हैं जो देवता है इंद्र है उसका जो दास है वो और बड़ा हो गया। लेकिन इंद्र के भी जो स्वामी हैं ब्रह्मा जी उनका जो दास है वो और बड़ा हो गया। लेकिन अब ये सोचिए कि जो ब्रह्मा जी के भी स्वामी हैं और ब्रह्मा ने सारे देवताओं के जो स्वामी है भगवान कृष्ण उनका जो दास है वो तो सबसे बड़ा पोस्ट हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं पोस्ट बड़ा। तो अगर दास ही बनना है तो छोटे का दास क्यों बने, है कि नहीं, क्यों ना कृष्ण दास बने। तो इसलिए ये बहुत बड़ा पोस्ट है वास्तव में। तो प्रेस्टीज इशू के हिसाब से भी देखा जाए तो सबसे बड़ा प्रेस्टीज क्या है, भगवान का दास बनना, भगवान का सेवक बनना, इससे बड़ा कोई पोस्ट नहीं है। तो मैं बताया कि कैसे लोग प्रेस्टीज के चक्कर में फंसते हैं और क्या होता है आर्टिफिशियली महान बनने का प्रयास करते हैं, और जो महान बनाते हैं वही उनको गिराते हैं। और माया का यही चाल है, जिसको ज्यादा चोट देना होता है वो पहले सबसे उसको ऊपर चढ़ाती है। नीचे से गिरेगा तो चोट लगेगा लेकिन थोड़ा सा लगेगा, है ना। तो जिसको ज्यादा चोट देना होता है पहले क्या करते हैं, पहले ऊपर ऊपर चढ़ो, हाँ आप बहुत महान है और थोड़ा ऊपर जाइए, हाँ अब ठीक है, नहीं नहीं और ऊपर और महान, और जब सबसे ऊपर चढ़ेगा तो सीढ़ी हटा देगी, गिरे धीरे से सीधे जमीन पे गिरे, महान गए नीचे। उसी तरह से जैसे एक बड़ा ही व्यक्ति हुआ था विश्व में जिसको बोलते थे अलेक्जेंडर द ग्रेट, सुना होगा आप लोगों नाम, सिकंदर महान उसको बोले द ग्रेट, वो भी अपने आप को बड़ा महान समझता था। और जैसे हम लोग अपने आप को समझते हैं महान, तो वो तो विश्व विजेता था, सारे संसार को जीत के आया भारत, और अलेक्जेंडर को अपने आप को महान मानने लगा वो, क्योंकि सब लोग बोलते थे आप महान हैं, जैसे अभी मैं बता रहा था। तो वो भी लगा इतने लोग बोल रहे हैं तो हो सकता है वो महान हो जाऊं। तो एक दिन क्या हुआ, उसको मलेरिया मच्छर ने काट दिया, मलेरिया काट मच्छर काटने से मरा अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट मरे मच्छर के द्वारा, ये है इनकी महानता। सोचिए जिसने पूरे विश्व को जीत लिया, भगवान ने दिखाया उसको, देखो तुम एक मच्छर ने तुम्हें मार दिया, ये है आपकी महानता। और मच्छर तो दूर की बात है, आपके शरीर के किसी बैक्टीरिया अगर गड़बड़ करना शुरू कर दिया तो वही मार देगा आपको, कैंसर हो जाएगा, भयानक बीमारी हो जाए, एक बैक्टीरिया अगर चाहे तो आपको मार सकता है। ये है हमारी महानता। वास्तव में हम महान नहीं हैं, वास्तव में हम भगवान तभी तक महान है जब तक भगवान हमें महान बना रहे हैं। और जिस दिन भगवान चाहेंगे महान से सीधे नीचे, जैसे जापान के लोग भी बड़ा गर्व करते थे, मैं महान है, हम वी आर ग्रेट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 6 मिनट के अंदर जापान 50 साल पीछे चला गया, 6 मिनट के अंदर, क्योंकि आर्टिफिशियली महान बनने का प्रयास न करें हम सब, शांति से में हम माने कि हे भगवान हम आपके दास हैं। और ये वास्तविकता है, रियलिटी में जीवन जिए तो ज़्यादा अच्छा है, है ना। तो माया का यही है कि ऊपर चढ़ाएगी और फिर नीचे गिरा देगी। और जिसको जो जितना ही ऊपर जाता है, ऊपर जाना गलत नहीं है, ऊपर जाइए, अगर भगवान आपको चाहते हैं कि बड़ा पोस्ट लीजिए, जैसे मैं भी ब्यास आसन पर बैठा हूँ, लेकिन मुझे पता है किसी भी दिन जिस दिन कृष्णा का मूड गड़बड़ हुआ गिरा देंगे फटाक से नीचे, समझ रहे हैं? तो इसको सत्य मानते हुए ब्यास आसन में बैठे रहे, लेकिन समझ लीजिए कि किसी समय गिर सकते हैं, इसलिए हमेशा अंदर ही अंदर प्रणाम करते रहना है, हरे कृष्णा हरे कृष्ण, इसी में भलाई है। और मानना है कि भगवान आप ही महान हैं। देखिए कितना आनंद है इसमें, कोई टेंशन नहीं है। तो हम अननेसेसरी लोड ना उठाएं लाइफ में, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं अब आप लोगों को, आर्टिफिशियली अपने को महान न समझे, क्योंकि महान के चक्कर में लोग सुसाइड कर लेते हैं, महान बने रहने के चक्कर में सुसाइड करना पड़ता है आज समाज में, क्यों? प्रेस्टीज इशू, क्यों ना नॉर्मल लाइफ जिए, जितना है उसी में संतोष करें, इस बात को मान के कि चलो यही भगवान की इच्छा है ना। तो ये क्या एंगल हुआ, टाइम हो गया है इसलिए ज़्यादा नहीं बताऊंगा, अभी केवल भोक्तारम्भ वाला पार्ट कवर किया है, अभी दूसरा पार्ट अभी बाकी था जो कि हम बताना है आपको, जो सर्वलोक महेश्वरम, वहाँ पे कैसे व्यक्ति फंसता है। तो ये जो प्रेस्टीज इश्यू है इसको हमें त्यागना है, प्रेस्टीज न बनाइए, मान और अपमान दोनों में बराबर रहना चाहिए, विक्ट्री एंड डिफीट, जय और पराजय दोनों में बराबर रहिए, यानी कि पराजय हो गया तो हार्ट अटैक हो गया नहीं, अजय हुआ तो उछल रहे हैं पार्टी मना रहे हैं, डिम 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 पार्टी मनाया जा रहा है, बहुत मजा आ रहा है, अगले दिन पराजय हो गया तो अब फांसी का फंदा लगा के लटक गए पंखे से, हो गया सारा डिम डिम। लेकिन जो भक्त है वो जय हो गया, सब बोले जय जय, हाँ जय जय जगन्नाथ, बोलो जय जगन्नाथ, जगन्नाथ की जय। अब पराजय हो गया, पराजय तो पहले भी था, वैसे ही पराजय ही था, वो तो जगन्नाथ की कृपा से जय हुआ था, कोई प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, पराजय होने दो, नो प्रॉब्लम, कोई टेंशन नहीं है, भगवान बोलते हैं भगवद गीता में जय पराजय में बराबर रहो। तो जब सुख आता है तो ज़्यादा उछलता भी नहीं है, और दुख होता है तो ज़्यादा उसको कोई अंतर नहीं है, जैसे समुद्र है, समुद्र जो होता है उसमें कितनी भी नदियां प्रवेश कर जाए शांत रहता है, और उसमें से है ना आप 200-300 केजी पानी निकाल दीजिए फिर भी कोई अंतर नहीं पड़ता है समुद्र में, आप 400-500 केजी पानी डाल भी दीजिए तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। उसी तरह से हमारा हृदय होना चाहिए, भक्त का हृदय, कोई आके अपमान कर दे हमारा तो करने दो, क्या बिगाड़ लेगा मेरा। एक बार मुझे फोन आया एक जगह से, और जैसे ही फोन मैंने उठाया वो व्यक्ति शुरू कर दिया गाली देना, मुझे समझ में आया ये क्या हो रहा है, ये सही घटना बता रहा हूँ, लोग बड़े पागल हैं इस संसार में, उस दिन मुझे एहसास हुआ। अब मैंने पूछा कि आप हैं कौन, बोला तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ, मैंने बोला इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, तो बोल रहा है मैं शहाबुद्दीन हूँ, अब मैं जेल में बंद हूँ, और एक बार और बंद होने में कोई दिक्कत नहीं है मुझे, तुम सुधर जाओ। मैं बोला पहले बात तो बताओ, बात है क्या? तो बोल रहा है तुमने मेरी बीवी के पास फोन क्यों किया? मैंने बोला मैंने फोन किया? बोला हाँ तुम्हारे नंबर से फोन गया था। मैंने हुआ क्या था कि एक भक्त थे तो उनका नंबर मैं नोट कर रहा था ना, तो लास्ट में 99 था, तो गलती से मैंने डबल वन नोट कर लिया। तो उनको एक बार फोन लगाया तो उसके घर चला गया, तो फिर दोबारा लगा दिया, मुझे लगा कहीं गलत नंबर डायल कर दिया होगा। अब दो बार फोन कर दिया, उसी में वो परेशान। अब परेशान इसलिए है क्योंकि वो क्रिमिनल है, और क्रिमिनल है तो उसको डर है कि कोई मेरे, मैं जेल में बंद हूं, अभी मेरे घर पे कोई अटैक ना कर दे। और वो मैं यहां पे ब्रह्मचारी, मैं क्या अटैक करूंगा उसके घर पे। लेकिन उसको डर है। मैं बोल रहा हूं हरे कृष्णा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। बोला है, अच्छा है, मतलब नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। मैं बोला अब क्या बर्बाद करोगे, और क्या बर्बाद है ही क्या बर्बाद। बड़ा तो किसी तरह से वो शांत हो गया। कहने का अर्थ यह है कि संसार में लोग आर्टिफिशियली अपने आप को बड़ा मानते हैं, लेकिन है अत्यंत दुखी, अत्यंत परेशान है। इसलिए भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि हमें शांत रहना चाहिए। भगवान को अगर हम अपने जीवन में लाएंगे और भगवद गीता ज्ञान को उतारेंगे तो हम सब शांत रहेंगे। कृष्ण भक्त निष्काम, अतएव शांत। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। कृष्ण का जो भक्त है वो निष्काम होता है, इसलिए शांत होता है। तो ये एक एंगल बताया कि कैसे अशांति होती है लोगों के जीवन में और उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं। अगर हम ये बात को माने कि भगवान ही हर चीज निर्धारित करते हैं, अगर हमारे कर्मों के फल के द्वारा अगर हमारे जीवन में कुछ गड़बड़ हो भी गया, दुख आ भी गया, तो हमें यही समझना है कि ठीक है, कुछ दिनों का है, चला जाएगा, उससे ज़्यादा शांत नहीं होना है। भगवान और भगवान की शरण लेनी है ना, और भगवान से प्रार्थना करना है, इस बात को मानना है कि हाँ मेरे ही कर्मों का फल है, हे भगवान। ये नहीं कि ब्लेम करना है दूसरे को, अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसके जिम्मेदार कोई और नहीं है, हम स्वयं हैं, इस बात को मानना है। और इसलिए क्या करना है, स्वीकार कर लेना है। अब हम किसी और को जिम्मेदार ठहराएंगे तो एक और जो है वो चेन बांध रहे हैं अपने गले के बगल में। इसलिए भगवान बता रहे हैं कि इस बात को मानना है और कर्म के बंधन को कटने दीजिए, पाप का जो प्रभाव आ रहा है और सहना है उसको। इसीलिए भगवान ने मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुख द आगमा पाइनो नित्यता स्थिति छसो भारत। हे भारत, सुख और दुख इस संसार में आएगा जब तुम मात्रा का स्पर्श कर रहे हो, भौतिक तत्वों से स्पर्श कर रहे हो। मात्रा स्पर्श अस्तु कौन्ते, हे अर्जुन, तो सुख भी आएगा और दुख भी आएगा, और दोनों को सहना है। दुख सहना आसान है लेकिन सुख को सहना ज्यादा मुश्किल है, ये आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। सुख सहना ज्यादा मुश्किल है, सुख में शांत रहना ज्यादा मुश्किल है। सुख में किसी शांत रहना कि नहीं मैंने नहीं किया, ये भगवान की कृपा है, नहीं, उसको समझना ज्यादा मुश्किल है। तो इसीलिए हर चीज को भगवान की कृपा मानते हुए उसे स्वीकार करें, और कभी भी हमें डिस्टर्ब, कभी निराश नहीं होना चाहिए जीवन में, कभी नहीं निराश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी मिल रहा है वो भगवान के आशीर्वाद को समझते हुए स्वीकार करना चाहिए। और भगवान से प्रार्थना करेंगे अगर आप, अगर पूर्ण विश्वास के साथ अगर भगवान से प्रार्थना करेंगे, उनकी शरण लेंगे, तो जितने पाप हैं उसको भगवान नष्ट कर देंगे, पापों के जो बोझ है उसको कम कर देंगे। क्योंकि पाप के कारण ही हमें दुख आते हैं। पाप हो सकता है इस जन्म के हो या पिछले जन्म के हो, लेकिन जब भी दुख आए इसका कारण एक ही है कि हमने कहीं ना कहीं पाप किया है। और कितने तो ऐसे पाप हैं जिसको कभी मिलने वाला है, तो कम से कम ऐसा भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, मैं मान रहा हूँ कि मैं पापी हूँ। अब ऐसा कहना बड़ा मुश्किल है, कोई व्यक्ति अपने आप को पापी मानना नहीं चाहता, समझते ही है। कोई क्रिमिनल जो है अपने आप को क्रिमिनल नहीं मानता, लास्ट दम तक प्रयास करता है कोर्ट में प्रूफ करने का कि नहीं, मैंने नहीं किया है। अब मजबूरी में अंत तक करना पड़ता है स्वीकार, अन्यथा कोई मानना नहीं चाहता। इसीलिए जेल का निर्माण किया गया है, अन्यथा जेल की जरूरत ही नहीं है। अगर क्रिमिनल स्वीकार कर ले कि हाँ मैं उससे गलती हुई और मैं वादा करता हूँ आज से गलती नहीं करूँगा, मैं मानता हूँ, तो जरूरत नहीं है जेल का। जरूरत का उद्देश्य पिटाई करना नहीं है, जेल का उद्देश्य है सुधारना। अब बिना पिटाई के अगर कोई सुधर जाए तो पिटाई की क्या हो सकता है। लेकिन समस्या है कि ज़्यादा लोग बिना पिटाई के नहीं सुधरते, इसीलिए पिटाई की व्यवस्था की जाती है भगवान के द्वारा। लेकिन अगर कोई बुद्धिमान है और मान लेता है कि हाँ मैं गलत किया हूँ और अभी भी कई इच्छाएं हैं गलत करने के अंदर, तो उसको स्वीकार करता बोलता है भगवान आप मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं अपने अंदर की पाप करने की प्रवृत्ति से छुटकारा प्राप्त कर सकूं, तो भगवान उसके पाप को शक्ति ही नहीं देते, उसके पापों को क्षमा भी करते। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापे भी मोक्षयिष्यामि मा शुच, डरो मत, डरिए मत, भगवान आपको एश्योरेंस दे रहे हैं कि सारे पापों से मैं मुक्त कर दूंगा तुम्हें, चिंता मत करो। तो भगवान हमें सुखी देखना चाहते हैं और हम भी आपको सुखी देखना चाहते हैं। प्रभुपाद किसी ने लिख रहे थे योर एवर वेल विशर, हमेशा। कई लोग पूछते हैं आप लोग हमें ये सब क्यों सुना रहे हो, आप हमसे क्या लेना चाहते हो, बताइए पहले शुरू में बता दो कितना का चेक चाहिए, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे पता है इस्कॉन वाले लास्ट में घुमा फिरा के मांगते हैं, शुरू में ही बता दो आपको क्या चाहिए, सीधा सीधा बात करो, हमें चेक नहीं चाहिए। हमें जो है वो आपकी आप सुखी देखना चाहते हैं, है ना, जैसे आज आप सब सुखी हैं, उसी तरह से हमेशा आप सुखी रहें, ये हम चाहते हैं, भगवान भी यही चाहते हैं। और इसी उद्देश्य से हम सब आपको ये ज्ञान देते हैं कि आप पाप के कार्यों में नहीं लगिए, क्यों, आप सबकी खुशी सुखी जीवन के लिए, क्योंकि अगर आप गलत करेंगे तो उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। इसीलिए प्रभुपाद बताते थे पाप के स्तंभ चार हैं, मांसाहार, नशापान, अवैध स्त्री संग और जुआ, सत्य शौच क्षमा दया, ये चार धर्म के स्तंभ हैं और इसका बिल्कुल उल्टा चार अधर्म के भी स्तंभ हैं। और जो अधर्म करेगा उसको उसकी सजा मिलती है। तो प्रभुपाद बोले ये चार नहीं करना है, इससे क्या होगा, आप माया के कष्ट से बचेंगे। और तो हमारे फायदे के लिए, जैसे पिताजी बोलते हैं बेटे को तुम रेलवे ट्रैक पे मत जाना, तो किसके फायदे के लिए बोलते हैं, बेटे के फायदे के लिए बोलते हैं, क्यों, क्योंकि रेलवे ट्रैक पे जाएगा तो ट्रेन आएगी उसको काट देगी, वो बोलेगा क्यों, मैं क्यों नहीं जाऊंगा, आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं कहीं भी जाऊं, तो पिताजी ठीक है जाओ पता चल जाएगा। तो हम अब जब समझाते हैं भक्तों को कि आपको ये कार्यों से बचना चाहिए, तो हमें समझना है क्यों हम चाहते हैं, हमारा अपना कोई स्वार्थ नहीं है, हम चाहते हैं समाज में लोग सुखी रहे, है ना, तो इसलिए बताते हैं। और साथ ही साथ हमें भगवान के नाम का जप भी करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये क्यों करें, अब पाप नहीं कर रहे हैं बस खत्म, ये एक्स्ट्रा क्यों ऐड कर रहे हैं आप, तो ये इसलिए करना है कि अब पाप नहीं करेंगे ठीक है, लेकिन पहले तो बहुत कर लिया है ना, अकाउंट पहले से इतना भरा हुआ है, तो वो भी तो खाली करना है, तो इसलिए। और पाप करने की प्रवृत्ति तो है अभी, वो कैसे नष्ट होगा? जब तक प्रवृत्ति नष्ट नहीं होगा तब तक चक्र लगा रहेगा। तो प्रवृत्ति को नष्ट करने के लिए ये हरे कृष्ण महामंत्र, इसको जप करने से हमारे अंदर जो हृदय के अंदर जो बीज है पाप का बीज है, तो जब तक बीज नष्ट नहीं होगा तब तक फल पेड़ निकलेगा। एक पेड़ को काट भी अगर दीजिएगा तो दूसरा निकल जाएगा और उसका फल जो है वो बड़ा कड़वा होता है। पाप के बीज का जो फल होता है वो बड़ा कड़वा होता है, जब खाते हैं तो दर्द करता है, लेकिन बीज बोते समय बड़ा आनंद आता है। बीज बोया तो जब दुख आता है तो बोलते हैं भगवान ये क्यों दुख क्यों दे रहे हैं आप हमें, तो आपने पेड़ लगाया आप फल खाइए, तो फल तो वो जो बीज जो है बीज को जलाना है, हमें भस्म करना है जलाकर, उसके लिए बड़ा ही आसान तरीका दिया भगवान ने, वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिंपल, सो सिंपल, 16 माला जप बस। रोज 16 माला कम से कम, कोई जरूर मतलब ये नहीं है, जिनको चाहिए तो 2 माला भी कर सकते हैं, 4 माला बाद में कीजिएगा, 16 माला कुछ दिनों के बाद, ज्यादा मुश्किल नहीं है ना, कर सकते हैं, इच्छा चाहिए। कई लोग बोलते मैं तो ऑफिस जाता हूँ, मेरे पास टाइम कहाँ है। मैं भी ऑफिस जाता था पहले, मेरा ऑफिस आप लोगों से ज्यादा था, मैं सुबह 7:15 बजे निकलता था, मैंने 3 साल जॉब किया, 7:15 बजे निकलता था, रात में 9:30 बजे आता था ऑफिस से, 14 घंटे का ऑफिस था, लेकिन फिर भी मैं 16 माला करता था। आप बोलेंगे हमारा तो परिवार भी है, आपका तो परिवार नहीं था। मेरा भी परिवार था, क्योंकि मैं एक बेस का इंचार्ज था, उस बेस में 25 लड़के रहते थे, और हर व्यक्ति का जो भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति देखना मेरा ही काम था, तो परिवार भी था, सब करते हुए मैं माला कर, कहते जहाँ चाह वहाँ राह, अगर इच्छा है तो समय निकलेगा। तो वास्तविक क्या है कि हमारी इच्छा होनी चाहिए, अगर हमें पता है कि खाना बहुत ज़रूरी है तो किसी न किसी प्रकार से खाने के लिए टाइम निकाल ही लेते हैं, है कि नहीं। तो उसी तरह से अगर हमें पता है कि ये बहुत आवश्यक है, आवश्यक ही नहीं अत्यंत आवश्यक है, तो हम इसके लिए समय निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे समस्त उपस्थित भक्तों से हमारा यही हार्दिक प्रार्थना है कि आप सब इसको गंभीरता से लीजिए, समझ ये नहीं कि हमें पता नहीं है, मैं कुछ नया नहीं बताया, आप सबको पता है ये सब, लेकिन क्या है हमारा मन हमें इसे गंभीरता से लेने नहीं देता। तो अगर आप थोड़ा सा भी गंभीरता से लेंगे कोई मुश्किल नहीं है। देखिए यहाँ पे कितने सारे भक्त ऑलरेडी कर रहे हैं 4 नियम का पालन और हरे कृष्ण महामंत्र 16 माला कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहा, कोई है ही नहीं पहली बार इस संसार में कोई 16 माला का जप करेगा आज के क्लास के बाद, ऐसा नहीं है, हजारों हजारों की संख्या में लोग कर रहे हैं। अगर आप करेंगे तो और बाद में आपको अच्छा लगेगा, आनंद आएगा, जब आपके चेतो दर्पण मार्जनम भव महादवाग्नि निर्वापणम, जब आनंद आएगा, जब भगवान मंत्र के प्रभाव से आपके दुखों का अंत होगा तो आपको आनंद आने लगेगा। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, एनी क्वेश्चन? एक क्वेश्चन लेंगे, ज्यादा नहीं। अच्छा करने की शक्ति और बुरा करने की शक्ति दोनों भगवान से आती है, लेकिन अच्छा इच्छा जो है वो हमारी होती है। अच्छा करने की इच्छा और बुरा करने की इच्छा दोनों हमारी होती है, लेकिन शक्ति करने की शक्ति जो है वो कहाँ से आती है? भगवान से। इच्छा और शक्ति का अंतर है, इच्छा हमारा होता है, शक्ति भगवान का होता है। समझ आया? हाँ, न चाहते हुए भी इसलिए होता है क्योंकि कभी हमने बड़ा ही जबरदस्ती चाहा था। जैसे पंखा है, बहुत तेजी से चल रहा है ना, और सडनली आप उसका स्विच ऑफ कर देंगे तो क्या तुरंत बंद हो जाएगा? नहीं होगा बंद। क्यों? कि कहीं से मोमेंटम पहले से ही है उसमें, तो धीरे धीरे समय लगेगा। और वो भी डिपेंड करता है कि कितना फ्रिक्शन है पंखे में। अगर पंखा बहुत फ्री है तो ज़्यादा देर लगेगा रुकने में, और ज़्यादा फ्रिक्शन है तो तुरंत भी रुक सकता है, लेकिन थोड़ा देर तक तो घूमेगा ही। तो अब जैसे मान ले आपने अभी बताया, जैसे कि अब इच्छा नहीं करते हम, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इच्छा नहीं करना पाप करने का, ये अपने आप में 50% काम तो हो गया, बाकी जो 50% बचा हुआ है वो बहुत जल्दी हो जाएगा। क्षिप्रम दुहोति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्ते तु प्रति जाना ही न मे भक्ता प्रणश्यति। भगवान बता रहे हैं कि जो दुराचारी है, अपिचेत सुदराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित हो सब, कि तुरंत आप बहुत जल्दी आप धर्मात्मा बन जाएंगे अगर आपने ध्यान वास्तव में ये सोच लिया कि ये गलत है और भगवान से प्रार्थना करेंगे तो धीरे धीरे हमारा। और महामंत्र का जप कीजिए, आसान हो जाएगा। तो घबराना नहीं है, अगर इच्छा है भी। अर्जुन ने यही प्रश्न पूछा था, ये काम के कारण होता है काम, तो ये काम को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है ये मंत्र का जप, महामंत्र। तो अगर आप वास्तव में, लोग बोलते हैं प्रभु जी मैं तो चाहता नहीं हूं लेकिन हो जाता है, क्या क्या प्रूफ है कि आप नहीं चाहते हैं? अगर जो व्यक्ति वास्तव में नहीं चाहेगा वो क्या करेगा? जो नहीं चाहता है पाप करना वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेगा। मैं चाहता नहीं, चाहता नहीं। अच्छा, आप जब करते हैं? नहीं, जब भी नहीं चाहता मैं, दोनों नहीं चाहता हूं, है ना। मैं पाप भी नहीं करना चाहता और जाप भी नहीं करना चाहता, दोनों से विरक्ति है मेरा, पूर्ण विरक्त। तो अगर पाप नहीं करना चाहते हैं तो जाप कीजिए, तभी आप पाप करने की इच्छा से मुक्त होंगे, है ना? क्लियर? तो वास्तव में कैसे पता चलेगा कि हम पाप नहीं करना चाहते हैं? जब हम जाप करेंगे। आप में से कितने लोग जाप करते हैं? हाँ, कई लोग नहीं करते हैं क्योंकि नए हैं, है ना? तो अब धीरे धीरे करेंगे, है ना? आप सबका अत्यंत धन्यवाद। हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।